मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे बेसिक्स के बारे में कुछ बातें करूंगा, खासकर जिसे एक क्वेश्चन को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को, दूसरी खबरों को देख लेते हैं। पहले मैं आप सबको एक सूचना देना चाहूँगा, और एक बहुत ही छोटी सी सूचना है दोस्तों कि यूट्यूब पर कल एक प्रोग्राम डाला गया है, एक छोटा सा प्रोग्राम है कि कोरोना के टाइम पढ़ाई का मोटिवेशन कैसे बढ़ाएं, है ना। हम सब अभी त्रस्त हैं, आप तो चलिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो दोहरा त्रस्त हैं, दोहरे रूप में। उधर परीक्षा का भी संकट है, तनाव है, और इधर जो माहौल है वो तो है ही है, दूसरे लोग भी त्रस्त हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखें। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कुछ थोड़ी सी बातें की हैं, थोड़े से उपाय के रूप में। यदि आप चाहें तो यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसका टाइटल है, कोरोना के टाइम पढ़ाई का मोटिवेशन कैसे बढ़ाएं। अब हम लोग आइए पहले एक दो घटनाओं को देख लेते हैं। इस बीच में अखबारों में भी आपको काफ़ी पढ़ने को मिल रहा होगा, एडिटोरियल कमेंट्स भी आए हैं, मैं भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। खासकर जो सोशल मीडिया हैं, और खासकर ऐसे सोशल मीडिया जो एक तरह से मध्यवर्ती ऑनलाइन के तहत आते हैं, इसकी परिभाषा है जिनके 50 लाख से अधिक यूज़र हैं। आपको ध्यान होगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने 3 महीने पहले एक कानून बनाया था, और इसकी हम लोगों ने बहुत विस्तार के साथ चर्चा की थी। और फिर ऑनलाइन स्टूडेंट को बकायदे जो मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने के लिए एक अलग से सेगमेंट दिया जाता है, उसके तहत विस्तार से इसके बारे में बात भी हुई थी। 3 महीने का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए या दुस्साहस देखिए कंपनीज का कि किसी ने उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। सरकार ने जो जो कहा था कि ये आपको करना होगा, उस पर कुछ भी नहीं किया गया। उसको लेकर के सरकार ने 1 सप्ताह पहले उन्हें अल्टीमेटम दिया कि आप ऐसा कीजिए, नहीं तो हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि सरकार इसके बारे में कोई कदम उठाती, जो व्हाट्सएप कंपनी है वो बकायदे हाई कोर्ट चली गई है। इसके खिलाफ उसने एक तरीके से केस दायर किया, याचिका दायर की है, और उसका जो केंद्र बिंदु है वह यह है कि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। आप जानते हैं कि जो निजता का अधिकार का मामला है, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, बहुत ही संवेदनशील मामला है। बहुत मुश्किल होता है कि कहां हम निजता के अधिकार को स्वीकार करें और कहां सही मायने में राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की सीमा की शुरुआत माने। दोनों के बीच में एक बहुत ही थीन, बहुत ही पतली, आप कह लीजिए विभाजक रेखा है। और जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं, देखिए सभी की स्थिति लगभग लगभग यही होती है, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो और दूसरे अधिकार हों, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रीडम जैसी तो कोई बात होती नहीं है। तो वही संकट अब यहां दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार ने तुरंत ये कहा है कि नहीं, वो निजता के अधिकार का सम्मान करती है, उसका उद्देश्य उसका उल्लंघन करना नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि कुछ इसमें ऐसे प्रोविजन हैं कि अगर हमने उन्हें लागू किया कानून के तहत, तो उससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बहुत से और दूसरे प्रोविजन हैं फ्रेंड्स, उनकी चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा हूं। आज बिजनेस स्टैंडर्ड का आपको एडिटोरियल कमेंट भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे अभी ध्यान देने की बात है वो ये है कि सरकार ने ये कहा है कि जब भी कोई किसी मैसेज की शुरुआत करता है तो बकायदे उस सामग्री को भेजने वाले का नाम बकायदे नोट होना चाहिए। अब आप देखिए कि जैसे ही कोई भी प्लेटफार्म उसके नाम को, उसकी जानकारी को अपने पास रख लेता है, तो सीधी सी बात है कि यहीं पर उसके पहचान का के उजागर होने का खतरा बन जाता है, और ऐसी स्थिति में निजता के अधिकार का उल्लंघन होने की आशंका रहती है। इसी को लेकर के उन्होंने ये केस दायर किया है। अब देखिए कि मामला क्या रूप लेता है, लेकिन यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, और बकायदे भास्कर में जो विराग गुप्ता जी का इस पर एक लेख छपा है वह भी उपलब्ध करा रहा हूं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, एक दूसरी घटना जिसे अखबार में ही किसी अखबार में जगह मिली है, न्यूज़ में जगह नहीं मिली है, वह चीन को लेकर। श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है उसने अभी एक बिल पारित किया है। उस बिल का नाम है, ध्यान सुनिएगा, कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन, यह उस बिल का नाम है। कोलंबो में पोर्ट सिटी यानी कि जो बंदरगाह शहर है, इकोनॉमिक कमीशन यानी कि इकोनॉमिक जोन जो होते हैं ना, SEZ जैसे होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उस तरह का कुछ शहर जैसा बनाया जाएगा, उससे संबंधित बिल। कमीशन का मतलब है आयोग। दरअसल आपको मालूम है कि चीन लगातार श्रीलंका पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश, उस रूप में नहीं कि प्रभुत्व जमाने की, अपनी अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और जो कोलंबो का जो बंदरगाह है उसको विकसित कर रहा है। तो उसके तहत जो कंपनी कोलंबो बंदरगाह को विकसित कर रही है, उसे लगभग लगभग 150 एकड़ जमीन उसने ली है, और वो जमीन उसको 99 साल के लीज पर दे दिया है श्रीलंका की सरकार ने। अब वहां वो अपना शहर बनाना चाह रहा है, शहर उसका अपना ही शहर होगा जहां चीन के लोग होंगे। अब इस शहर का प्रशासन कैसे हो, इसके लिए एक आयोग गठित किया जाएगा। देखिए इसमें कमीशन शब्द है, आयोग बनाया जाएगा, 7 सदस्यीय यह आयोग होगा। इसमें 5 सदस्य बकायदे श्रीलंका के होंगे और 2 सदस्य चीन के होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पोर्ट सिटी के लिए सभी नियम कानून अलग होंगे। सोचिए, मतलब अगर किसी को इस सिटी में एंटर भी करना हुआ तो उसके लिए अलग से पासपोर्ट लेना होगा, वहां के लिए अलग से नियम कानून होंगे, टैक्सेशन सिस्टम अलग होगा, और ये सारे फैसले यह आयोग ही करेगा। आप यूं कह लीजिए कि यह एक प्रकार से कोलंबो में चीन का नगर होगा और उसकी प्रभुसत्ता भी एक प्रकार से आयोग के पास होगी। आप कल्पना कर सकते हैं, आप याद करने की कोशिश कीजिए, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं तो जो ब्रिटेन के लोग भारत में आए तो वे भी अपना इस तरह का सिटी भारत में बनाते थे, इस तरह के सिटी बनाते थे, और आगे चलकर के उसने क्या रूप लिया हम जानते हैं। भारत के लिए चिंता की बात इस मायने में है दोस्तों कि क्योंकि कोलंबो से जो भारत की दूरी है, साउथ का हमारा जो पॉइंट है, उसकी दूरी केवल 290 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि पोर्ट सिटी बनने के बाद चीन यहाँ स्थायी रूप से रहने की स्थिति में होगा। 99 साल तो बहुत होते हैं, एक प्रकार से उसका एक अड्डा बन गया, और भारत से उसकी दूरी हार्डली 300 किलोमीटर है। चीन के साथ हमारे क्या संबंध है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चीन के साथ पाकिस्तान के क्या संबंध है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर बन रहा है और उसके लिए चीन पाकिस्तान को कितना धन दे रहा है आपको मालूम है। यहाँ तक चीन की स्थिति हो गई कि वो पाकिस्तान के विदेश नीति में हस्तक्षेप भी करता है, करने की स्थिति है। नेपाल की राजनीति में धीरे धीरे चीन की दखलंदाजी बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए है कि वहां के जो पीएम जो ओली साहब थे वो भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। सियाचिन के मामले में आपको मालूम ही है कि कैसे लगातार हम चीन के विरोध का सामना कर रहे हैं, और अभी खासकर जो लद्दाख में हुआ है वो आपके सामने है। तो कुल मिलाकर के ऐसी परिस्थितियों में चीन के लिए श्रीलंका सरकार के द्वारा इस बिल का पारित किया जाना भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ी सी चेतावनी तो जरूर है। इससे संबंधित टॉपिक को अपडेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसमें इस तथ्य को शामिल करें, राइट फ्रेंड्स। आइए अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं, और आज का हमारा मुख्य विषय है कि जो मैंने आप सबसे बेसिक की बात की थी, वो बेसिक मूलतः होता क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आप लोगों को एक प्रश्न दिया था और मुझे इस बात की बेहद खुशी है, सच पूछिए तो आत्मिक खुशी है कि आप लोगों ने उस प्रश्न को हल करने की जो प्रक्रिया मुझे लिखी है उसमें मैं मैच्योरिटी देख रहा हूं। पहले जब आप सब लिखते थे तो किसी किसी में मैच्योरिटी दिखाई देती थी, लेकिन अभी जो आप लोगों ने उत्तर भेजे हैं, जो मेल मुझे लिखे हैं, उनमें से ज्यादातर में मुझे मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। आप कह सकते हैं कि सर ये मैच्योरिटी इसलिए कि ये जो प्रश्न था ये दूसरों की तुलना में सरल था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों की भाषा, आप लोगों के लिखने के तौर तरीके और जो पकड़ है उससे मैं समझ सकता हूं कि नहीं, आप में धीरे धीरे मैच्योरिटी डेवलप हुई है। इसलिए मैंने कहा कि आत्मसंतोष की बात है मेरे लिए कि हम लोग लगातार जो प्री के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके तकनीक पर बात कर रहे हैं, तो उसे आप आत्मसात कर रहे हैं, उसे सीख रहे हैं, केवल सुन भर नहीं रहे हैं। तो देखिए सीधी सी बात है कि किसी भी टीचर को जब ये महसूस होता है कि नहीं उसके श्रम से उसके स्टूडेंट्स को लाभ मिल रहा है, तो यही तो उसका सबसे बड़ा रिवार्ड होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये रिवार्ड मुझे देने के लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों देखिए अब इसमें चैलेंज क्या है जो मैंने आपको प्रश्न दिया था, मेरे पास जितने भी उत्तर आए हैं मैं उत्तर पर नहीं जा रहा हूँ, कुछ गलत भी उत्तर आए हैं मेरे पास, सही क्या है गलत क्या है इसका निर्णय आप लोगों को लेना है, लेकिन ठीक है एटलीस्ट कोशिश आप लोगों ने की। और मजेदार बात है कि मेरे पास जितने भी उत्तर आए हैं उसमें केवल दो ही विकल्प हैं, विकल्प तो चार हैं कूट के ए बी सी डी, लेकिन या तो सी लोगों ने कहा है या डी लोगों ने कहा है, मतलब ए और बी को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है, तो ये भी एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। मैं तो देखिए केवल जो बीमारी है उस वो बीमारी कितनी कम हो रही है इसके आधार पर निर्णय ले रहा हूँ कि नहीं अब आप ठीक हो रहे हैं, बस मैं ये नहीं मान करके चल रहा हूँ कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन ये विश्वास है कि आप पूरी तरह से ठीक होंगे। देखिए जो मैं बेसिक्स की बात करता हूँ दोस्तों, कि कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पकड़ा भी कि इसमें बेसिक क्या है, जो बेसिक है वो है सार्वजनिक निवेश। आप किसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट मानते हैं, सार्वजनिक निवेश किसे मानते हैं? हो सकता है कि ये टॉपिक अलग से आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन कॉमन सेंस में आपको देखना होगा कि सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यानी कि आपने किसी व्यक्ति को कोई मदद कर दी और उसको मदद मिल गई, बात खत्म हो गई। जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं या जो कुछ भी आप बना रहे हैं, कुछ भी बनाएंगे तो पैसा तो खर्च होगा ही, उससे पब्लिक को फायदा होगा, सब लोगों को फायदा होगा, काफी लोगों को फायदा होगा, वो जिनके लिए बनाया जा रहा है उससे उसका फायदा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मैं बैंक से लोन ले लेता हूं या सरकार मुझे अनुदान दे देती है और मैं एक क्लिनिक खोल लेता हूं और लोगों से फीस लेता हूं, तो ये मेरा फायदा हुआ, ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन सरकार अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलती है तो वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी जो बिल्डिंग बना रही है उसमें जो इक्विपमेंट्स आ रहे हैं वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अगर आप जानते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या है, केवल यही सिंपल सी बात है कि जिससे सार्वजनिक हित होता हो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे सार्वजनिक लाभ मिले, बस आपको केवल यही देखना है कि सरकार ने यहां जो छह तरीके कदम उठाए हैं इनमें से सार्वजनिक लाभ किन किन के माध्यम से मिल रहा है, व्यक्तिगत लाभ और सार्वजनिक लाभ, इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए तभी आप इसे पकड़ पाएंगे। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ने अपने मेल्स में गलत उत्तर चुना है, उन्हें मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अब मेरे इस फार्मूले का उपयोग करें कि जो भी विकल्प दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उन कथन छह कथन हैं, उनमें से एक एक कथन को इस आधार पर तौलिए कि इसके कारण एक व्यक्ति विशेष को लाभ मिल रहा है या सभी को लाभ मिल रहा है। यहां व्यक्ति विशेष का क्या मतलब है, किसान, एक किसान या किसान के परिवार को लाभ मिल रहा है या सभी किसानों को लाभ मिल रहा है या भविष्य में लाभ मिलेगा। इस कसौटी पर आप इन छयों को कसने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों इसे ही मैं कहता हूं बेसिक्स, कि अगर आप सार्वजनिक निवेश के बेसिक को पकड़ लेते हैं तो इस प्रश्न को आप बड़े आराम से हल कर लेंगे। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट ने बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार किया कि जब उन्होंने सामान्य तौर पर इस प्रश्न को पढ़ा था तो उन्हें लगा था कि नहीं नहीं ये उसके बस की बात नहीं है और उन्होंने इसे छोड़ दिया था, और अब उन्होंने इसे सही तरीके से हल किया है। दोस्तों यही कमाल की बात है जो प्री एग्जामिनेशन आपसे एक्सपेक्ट करती है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं अनामिका विमल का जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं। अनामिका तुम्हारे बहुत ही खूबसूरत उदार शब्दों के लिए मैं मन से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो अन्य मित्र हैं उनके नाम हैं सोनल सरताबे, नितेश विश्वकर्मा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, विजय कुमार लहरगागा पंजाब से, जगमोहन गोले बड़वानी मध्य प्रदेश से, और रोहित सवधानी जयपुर से, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।